Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, presented by Swami Sri Ananda Andaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Bhakti Shakti Samhita, Vatsal Nimata, Vishnu Vivehino, Atmasarubandhu. This Taittiriya Karanikuko Lekar Ke उपासना संबंधी प्रसंग का निरूपण किया जा रहा, जिसमें ओम को ही उपास्य रूप से ग्रहण किया गया और उस ओम की उपासना कैसे करनी चाहिए इस चीज को यहां पर बतला रहे हैं। तो संकेत कर रहे हैं कि पहले तो उपासना के लिए क्या होना चाहिए, तो कहने लगे पात्रता होनी चाहिए। जब साधक को पात्रता को ग्रहण कर लेता है, अर्थात योग्यता को ग्रहण कर लेता है, सामर्थ्य को ग्रहण कर लेता है, उस सामर्थ्य के ग्रहण करने के पश्चात फिर उस उपासना को करता है, तो उसे उसका सटीक फल प्राप्त होता है। ऐसा संकेत किया। तो क्रम से जो है मेधा आदि की कामना करते हुए, मेधा आदि को प्राप्त करते हुए और स्त्री आदि को प्राप्त करते हुए जब वह पूर्ण समर्थ हो गया, तब उसके लिए संकेत किया अब उसे किसकी कामना करनी चाहिए। पहले तो मेधा की कामना बतलाई, फिर स्त्री की कामना बतलाई। ये जो कामना है वो कामना है पात्रता के लिए, योग्यता के लिए। उसके पश्चात जब योग्यता आ गई, तब जो हमारा साध्य है, हमारा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकेत किया कि फिर हम जब ओम की उपासना करेंगे तो उससे क्या प्राप्त होगा। तो कहा स्वराज्य की प्राप्ति हो। तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, और आप जानते हो स्वराज्य क्या है, तो सभी जानते इस चीज को। स्वराज्य का मतलब है कि जहां पर हम पूर्ण स्वतंत्र हो जाएं, हमारे जीवन में कोई परतंत्रता। यदि परराज्य होगा तो कहीं न कहीं हमारे जीवन में परतंत्रता रही। हम उस राजा के अनुकूल चलेंगे, उस मालिक के अनुकूल चलना पड़ेगा, तो हमारे जीवन में परतंत्रता रहेगी। और आप जानते हो परतंत्रता जहां पर भी होती है, तो तुलसीदास ने लिखाई पराधीन सपने सुख न, क्योंकि पराधीनता में कभी भी सुख नहीं हो सकता। और जो सुख हमें प्रतीत भी होता है, जिस सुख को हम सुख समझते हैं, वो सुख कैसा होता है, तो कहने लगे वो दुखों से मिश्रित सुख होता है। सुख तो होता है लेकिन वो सुख कैसा है, वो दुखों से मिश्रित सुख है। इसलिए संकेत करते जहां पर दुख की मिश्रितता न रह जाए, तो दुख की मिश्रितता से या दुख की मिलावट से रहित तो जो स्वतंत्र सुख है, उस स्वतंत्र सुख को हमें प्राप्त कर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो स्वतंत्रता चाहिए। और स्वतंत्रता को ही यहां स्वराज्य शब्द से कह दिया है ना। तो स्व आगे है राज्य शब्द, राज्यते राडते इति स्वराज्य है ना। तो जहां पर स्वयं ही प्रकाशमान होता है, स्वयं ही जहां पर उसकी स्थिति माने प्रकाश की होती है, राज्य दीप्तवर्थ में धातु है, तो उसे कहते हैं स्वराज्य। ऐसा संकेत किया। और स्वतंत्र शब्द का भी अर्थ क्या है, तो स्व शब्द है आगे तंत्र शब्द है। तंत्र शब्द यद्यपि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन प्रसंग के अनुसार ही उन अर्थों को ग्रहण किया जाता। तो तंत्र शब्द का अर्थ एक शास्त्र विशेष भी है, आगम करके जिसको कहते हैं, तो शास्त्र सब अर्थ भी निकलता है उसका। और तंत्र एक विशेष साधना भी माने तांत्रिक जिसे कहते हैं, तो वो तंत्र एक विशेष साधना का भी नाम है। और दूसरी तरफ तंत्र शब्द का अर्थ है साधन, तंत्र माने साधन और स्व माने अपना। तो जहां पर अपना साधन हो तो क्या होगा भाई, दूसरे का साधन है तो हमें क्या रहेगी, वो दे नहीं दे कब नहीं दे है ना। और उस साधन को भी शुद्ध रूप में दे या अशुद्ध रूप में दे, किस रूप में दे, तो वो हमारे काम आने वाला है या नहीं है, तो ये सब, और फिर कब उसको वह ग्रहण कर ले, तो इसलिए वहां पर क्या रहेगी, पराधीनता रहेगी। और वहां पर हमेशा एक संकोच, एक भय हमारे जीवन में बैठा रहेगा। और जहां पर अपना साधन है तो हम कैसे, तो स्वतंत्र हैं, हम जब चाहेंगे जिस समय चाहेंगे, वहां पर काल का बंधन नहीं रहेगा, है ना, और अन्य किसी का बंधन नहीं रहेगा, देश आदि का बंधन नहीं रहेगा, उसे हम जिस देश में चाहें, जिस काल में चाहें, अर्थात जब चाहें, जहां चाहें, वहां हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिस वस्तु को हम जब चाहें और जहां चाहें प्रयोग कर सकते हैं, तो वो वस्तु हमें क्या करेगी, हमें उससे होने वाले लाभ को प्राप्त कराएगी, उस लाभ से हम वंचित नहीं। तो क्या हो गया, वो सुख हमारे हाथ में हो गया, वो शांति हमारे हाथ में हो गई, वो लाभ हमारे हाथ में हो गया, इसी का नाम है स्वतंत्र। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग स्वतंत्रता दिवस आदि मनाते हो, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या है, तो स्वतंत्र शब्द का ये तात्पर्य अर्थ है, वो स्वतंत्र हो जाता, उसी को यहां स्वराज्य शब्द सीखा, तभी हमारे जीवन में क्या आता है, स्वराज्य आता, ऐसे स्वराज्य की प्राप्ति। अभी हम लोग जो है सुख प्राप्त करते हैं, और जो भी सुख प्राप्त करते हैं वो सुख कैसा है, आप विचार करो, जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो कह दोगे इंद्रियां हमारी, कह सकते हो, इंद्री रूप साधन किसके, का मेरे, और इंद्री रूप साधन मेरे हैं और मैं जब चाहूं तब उनका प्रयोग कर सकते, लेकिन इसमें भी पराधीनता, ये साधन आपके होते हुए भी आप में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, क्यों, इंद्री रूप साधन कैसे है, ये परापेक्षी है, नेत्र के अंतर्गत ज्योति है वो सर्वथा देखने में समर्थ नहीं, कब देखेगी, तो उसके लिए अन्य प्रकाश की, अन्य ज्योति की अपेक्षा है, सूर्य की ज्योति हो, चंद्रमा की ज्योति हो, विद्युत अग्नि आदि की ज्योति हो, तभी वह नेत्र देखने में समर्थ होगा। तो अपने उस लक्ष्य को, अपने उस विषय को वह तभी ग्रहण कर सकता है कि जब उसके साथ में ये जो, जिन्हें हम आज दैविक कह देते हैं, तो आज दैविक ज्योतियां भी उसको जो है सहयोग करें, तो उस नेत्र को किसकी जरूरत है, आज दैविक ज्योतियों की, और आदि भौतिक ज्योतियों की, सूर्य आदि को लेकर के, तो आदि दैविक और आदि भौतिक ज्योतियों को लेकर के ही नेत्र जो है देखने में समर्थ होता, यदि ये उसके सहयोग नहीं करें तो नेत्र जो है देखने में समर्थ नहीं हो, और नेत्र जब समर्थ नहीं होगा तो फिर क्या करोगे, तो काल की परिच्छिन्नता आ गई, और काल की परिच्छिन्नता जहां आ गई तो आप परिच्छिन्न हो गए, पराधीन हो गए, और जब पराधीन हो गए तो आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। तो इस प्रकार से समस्त जितने भी हमारे इंद्रिय अवयव हैं, उन सारे इंद्रिय अवयवों की यही स्थिति है, वो पूर्ण स्वतंत्र साधन हैं, हम उनको अपना मानते, वो हमारे हैं, लेकिन हमारे होते हुए भी वो साधन पूर्ण स्वतंत्र, हम जब चाहें तब प्रयोग कर लें, जहां चाहें वहां प्रयोग कर लें, ऐसा संभव नहीं। इसलिए संकेत किया कि वहां पर हमारे जीवन में क्या है, एक पराधीनता बैठी हुई है, अर्थात वहां पर हम स्वराज्य सुख को प्राप्त करना चाहें तो ये संभव नहीं। इसलिए कहा कि स्वराज्य सुख को यदि प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कहने लगे इन सारी इंद्रिय आदियों में सामर्थ्य आदि ग्रहण करते हुए उन इंद्रियों को, उन साधनों को फिर किस साधना में लगाना है, तो उसके लिए संकेत किया, उसी को लेकर के यहां पर उस अक्षर रूप की चर्चा की गई, ओम की चर्चा की गई कि उस ओम में उसको लगाना है, और लगाना है तो लगाने का मतलब क्या, किसी पदार्थ को हम कहीं लगाते हैं तो लगाने के लिए, या उसके संबंध स्थापित करना, तो संबंध स्थापित करने के लिए क्या चाहिए, पहले जानकारी चाहिए, इनका संबंध किस किस प्रकार से बन सकता, और किस प्रकार से संबंध बन सकता, इसके लिए क्या चाहिए, उभय पदार्थ का भी ज्ञान चाहिए, इस पदार्थ की स्थिति क्या है और इस पदार्थ की स्थिति क्या। एक स्क्रू को कहीं पर आप फिट करना चाहते हो तो आपको क्या देखना पड़ता, इसकी चूड़ी सही है और जिसमें स्थापित करना उसकी चूड़ी सही है, इस वो स्क्रू का जो आकार है उसी आकार का उस जगह पर भी जो है स्थल है या कि नहीं है, कम ज्यादा होगा तो भी वो फिट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें संबंध के लिए देखनी पड़ती, अब उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। तो स्क्रू कैसा लेना पड़ेगा, कहा उसके अनुकूल हो जाए, जो वहां पर संबंधित हो जाए, और संबंधित हो जाएगा तो वहां पर कार्य जो है करने में भी हम समर्थ हो जाएंगे, माने समीपता उसकी हो जाए। ऐसे ही हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो है उसकी स्थिति क्या है, उसे पहले देखना होगा, उसका विवेक करना होगा, और उसका विवेक करते हुए जहां पर इंद्रिय और मन को लगाना उस वस्तु को भी देखना होगा, और उसकी स्थिति क्या है, उसका प्रारूप क्या है, उसे देखना होगा। और दोनों को जब हम ठीक ठीक ढंग से समझ लेंगे और दोनों की परिस्थिति को हम समझ लेंगे, फिर उनका हम संबंध यदि स्थापित करना चाहेंगे तो संबंध स्थापित करने में सहजता आ जाए, और जैसे ही संबंध स्थापित होगा तो उसमें वो योग्यता आ जाएगी कि जो हम लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ ले सकें, उसमें गति आ जाएगी, उसमें क्या होगा, एक गति आ जाएगी। और इसी प्रकार से यहां पर जब संकेत किया तो अब जो है यहां कहने लगे कि मेधा से संपन्नता का मतलब ही है कि हमारी बुद्धि के अंतर्गत है उसकी बुद्धि की चूड़ियां सही हो जाए। मेधा क्या करेगी, मेधा जो है बुद्धि की डाई समझ लो, मेधा क्या है डाई, उस बुद्धि के अंतर्गत वो चूड़ियां बना देती, चूड़ियां क्या करती हैं, आगे आगे बढ़ती जाती, ग्रस्ती जाती, उससे संबंध जोड़ती चली जा रही, जैसे उनको घुमाओ जैसे उनमें गति दो तो पकड़ती चली जा रही। ऐसे ही हमारी बुद्धि पकड़ने के कार्य में ठीक हो जाए, बुद्धि उसको ठीक ठीक ढंग से पकड़ ले, तो पकड़ने के लिए क्या चाहिए, कहा चूड़ी चाहिए, है चूड़ी क्या है तो मेधा, मेधा क्या काम करती है, मेधा और उस बुद्धि के अंतर्गत वह ग्राहकता और संबंध बनाने की स्थिति को पैदा कर देती है, अर्थात ठीक ठीक दोनों का विवेक करा देती है। और जब विवेक हो जाता है तो विवेक होने पर भी एक चीज और जरूरी है, वो क्या है, विवेक तो है लेकिन विवेक होने पर माने स्क्रू भी हमारे हाथ में है और जहां फिट करना है वो वस्तु भी हमारे सामने है, लेकिन हमने स्क्रू को चूड़ी की तरफ से पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया, चूड़ियां सही है उसमें संबंध हो सकता है, लेकिन उस स्क्रू को हमने चूड़ियों की तरफ से पकड़ लिया है और उसका जो मत्था होता है उधर से हम उसे फिट करने लगे, तो क्या वो फिट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा, मत्थे की तरफ से पकड़ना पड़ेगा, माने वो एक उसका जो मत्था है उसका आश्रय है उसकी जो रुकावट है उस रुकावट की तरफ से पकड़ना होगा और चूड़ियों की तरफ से उसे है संबंधित करना पड़ेगा, और तब जाकर के क्या होगा, तब जो है उसमें गति आएगी और वो उससे संबंधित होगा। तो इसको ही वैराग्य कह दिया गया। और वैराग्य का मतलब क्या, अभी जहां पर हमारी बुद्धि का राग बैठा हुआ है वहां से राग को खत्म नहीं करना, खत्म किसे करना, कहने लगे उसकी दिशा को खत्म करना, उसकी दिशा किधर है, उस दिशा को केवल मोड़ना मात्र है, राग ज्यों का त्यों रहेगा, राग को खत्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब उसको जैसे ही हमने उलट दिया, उसे एक दिशा दे दी, उसे मोड़ दिया, तब जो है क्या हो गया, तब उसी का नाम हो गया वैराग्य, माने विपरीत राग हो गया, ठीक है ना। और विपरीत राग वैराग्य शब्द बनता ही कैसे, तो माने राग और राग का उल्टा क्या हो जाएगा, विराग, तो विराग का मतलब क्या हो गया, विपरीत राग। अब विपरीत राग तो विराग हो गया, और विरागे भवः इति वैराग्य ऐसा शब्द बनता है, विराग शब्द में तद्धिति प्रत्यय करके और फिर करते हैं विरागे भवः इति वैराग्य। अब उस वैराग्य विराग में रहने वाला जो धर्म उसकी स्थिति क्या है, जो वैराग्य में रहने वाला धर्म, वह धर्म ही क्या कहलाता है, वैराग्य कहलाता। विराग में रहने वाला जो धर्म है वह कहलाता है वैराग्य, और विराग में रहने वाला धर्म क्या है, तो जिसे वैराग्य कहते हो, तो वैराग्य का मतलब ये है कि जहां पर इंद्री और मन दोनों ही दमित और समित हो चुके, और दमसम का मतलब किया क्या है कि उधर से बिल्कुल उधर विपरीतता उनके अंतर्गत हो, और विपरीतता ही नहीं आ गई, इसीलिए फिर आगे ऊपर तितिच्छा आदि शब्द का प्रयोग कर दिया, माने अब जो है विपरीतता आकर के पुनः उलट नहीं रहे, पुनः उधर स्थिति नहीं जा रही, सर्वथा वही स्थिति जिसकी हो गई, इसको उपरती करके कह देते हो। तो इस प्रकार से यो वैराग्य का धर्म क्या है, तो वहां उपरती की भी अपेक्षा वो वैराग्य धर्म में होगी। विराग में तो इतना उल्टा हो सकता है, लेकिन वैराग्य में पुनः उल्टा होने की स्थिति न आए तो उपरती भी जोड़ दी, इसलिए परस्पर इन सब शब्दों का संबंध होता है। तो अधिकारी वेदांत के अंतर्गत भी इनकी चर्चा की गई, और यहां पर भी वही चाहे भक्ति हो उपासना हो वहां पर भी उनकी आवश्यकता है। इसलिए संकेत किया कि वैराग्य हो जाए, और जब वैराग्य हो गया विवेक भी हो गया तब क्या करना होगा, तब कहने लगे अब उसके संबंध को स्थापित करना। अब वो जो संबंध आएगा उस संबंध में क्या मतलब है, उसी को कह देते हैं तत्परता। गीता आदि में सुनते हो या संलग्नता या संबंध की स्थिति, या दूसरी भाषा में उसी को कहा जाता है प्रेम। क्या कहा जाता है, प्रेम, या उसी का नाम है भक्ति, या उसी का नाम है उपासना। उसके समीप में स्थापित कर देना, उसके समीप में आसन लगा लेना, और उस समीप में आसन लगा करके उसमें गति रखना। प्रेम तो हो लेकिन प्रेम में गति न हो तो वो भक्ति नहीं कर, तो गतिमान प्रेम। इस प्रकार से जब उसमें गति आ जाती है तो गति आने पर फिर क्या होता है, और गति के लिए अंतिम शब्द प्रयोग कर दिया वेदांतियों के लिए, कह दिया मोमोक्षा। क्या कह दिया, मुमुक्षा। और हैं भक्तों के लिए क्या कह दिया, भक्तों के लिए नारद जी ने कहा क्या कहा, सा त्वस्मिन परम प्रेम रूप। संकेत क्या किया है, सा त्वस्मिन परम प्रेम रूप। वो जो भक्ति है, वो जो प्रेम है, वो किसके प्रति, तो उसके प्रति संकेत किया केवल, क्योंकि अभी परमात्मा का हमें साक्षात्कार तो है नहीं, अभी तो एक आस्था के अनुसार, एक श्रद्धा के अनुसार, श्रवण के द्वारा हमें जो उसमें जो है एक आस्था हुई है, श्रद्धा हुई है, उस श्रवण के अनुसार अब हम उसका मनन कर रहे हैं। और मनन कैसा है, तो मनन जो है पूर्ण निश्चयात्मक, और जब पूर्ण निश्चयात्मक मनन हो जाता है तो उसमें निधिध्यासन की गति आ जाती। जब तक जिस वस्तु में पूर्ण निश्चय नहीं होता है तब तक संशय बना रहता है, और जहां संशय बना रहता है तो वहां विकल्प उठते रहते हैं, और जहां विकल्प उठते रहते हैं वहां पर वह वस्तु एकात्मिकता या उसकी पूर्ण गति या परमता ये संभव नहीं। इसलिए जिस वस्तु का निश्चय होता है उस वस्तु के ध्यान करने के लिए, उस वस्तु का निध्यासन करने के लिए हमें ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं होती, तब वहां एक सहजता आ जाती है, एक स्वाभाविकता आ जाती है, सहजता आ जाती, स्वाभाविकता आ जाती है। और वो स्वाभाविकता फिर क्या है, तो कहने लगे अब अन्यत्र उसकी कहीं भी, क्योंकि संशय नहीं, विपर्य नहीं, पूर्ण निश्चय, इसलिए अन्यत्र या उलटना आदि उसका होता ही नहीं, अन्यत्र उसका कहीं प्रेम होता नहीं, उसकी दृष्टि में अब अन्य कोई वस्तु दिखाई देती है। ये संकेत किया, और लोक में आप देखते ही हैं, पति चसा प्रसादे चसा सर्वत्र सा सा सा, ये क्या, ये भी अद्वैत कह दिया गया, एकता कह दी गई। तो ये स्थिति उसके जीवन में आ जाती जिस पदार्थ में उसका निश्चय हो जाता है, तो इस प्रकार से परम शब्द इसलिए जोड़ दिया कि उसके प्रति जिसमें तुम्हारा निश्चय हो गया, जिसमें तुम्हारी आस्था हो गई और उस आस्था और निश्चय के अनुसार तुमने जो है उधर को गति कर दी। अब जो वह गति है तो वो गति एक सहज भाव को प्राप्त हो जाती है और वो गति का नाम ही है परम। क्योंकि वो गति किसके प्रति? परम प्रेम रूपा। परम शब्द का अर्थ ही होता है परम। किसे कहते? शून्य रहतत्वम परमत्वम। आप समझ लो, अब ये लक्षण कर दिया कि शून्य रहतत्वम परमत्वम, तो क्या मतलब हो गया? शून्य का मतलब क्या है? शून्य का मतलब पदार्थ विशेष का अभाव, जहां पर कोई पदार्थ नहीं, जहां कोई आकार नहीं, जहां कोई प्रकार नहीं, जहां कोई गुणधर्म नहीं, उसे क्या कहोगे? शून्य। आकाश कैसा है? आकाश को शून्य कहते हो, तो आकाश कैसा है? कोई आकार है उसमें, कोई प्रकार है उसमें, लेकिन भ्रांति से नीलिमा आदि दिखलाई भी देती। लेकिन जो है अब कहने लगे शून्य रहता तुम, वहां पर जो भ्रम की स्थिति है, हम जानते नीलिमा नहीं है लेकिन फिर भी प्रतीत होती, ऐसी प्रतीति में कोई आस्था जिसकी नहीं रहे, तो जहां शून्य की विरत माने तो माने सर्वाभाव, तो अब अन्य किसी का भाव भी नहीं है और अभाव भी नहीं, क्योंकि अभाव से भी उसकी कल्पना हो जाती। तो जहां पर सर्वाभावा भाव हो गया उसका नाम है परम। उसे क्या कहेंगे? परम। तो सर्वाभावा भाव होकर के और जब प्रेम होता है तो सर्वाभावा भाव कहां होगा? विचार करो, आप कहते हो है, फिर कहते हो नहीं है, तो है माने भाव और नहीं है माने अभाव, लेकिन ये दोनों का प्रयोग कहां होगा? भाई किसी न किसी अधिष्ठान में होगा, किसी न किसी आश्रय में होगा। आश्रय से रहित में कभी भी भाव और अभाव का प्रयोग हो ही नहीं सकता। इसी को श्रुतियों के अंतर्गत विधि और निषेध कहते हैं। विधान भी करने के लिए किसी आश्रय की आवश्यकता है और निषेध करने के लिए भी किसी आश्रय की आवश्यकता है ना। और जब विधि भी गई निषेध भी गया तो क्या बचा? आश्रय बच गया, अधिष्ठान कहीं जाएगा है ना। अब वेदांतियों का जो बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है, सर्प है ना, और फिर जब ज्ञान हुआ विवेक हुआ कहा सर्प नहीं ये तो मिथ्या बुद्धि थी। तो अब सर्प है और नहीं है ये दोनों बातें किसमें सिद्ध हुई? रस्सी में, और रस्सी में हुई तो अब वहां क्या रह गया? अब सर्प है भी नहीं बचा और सर्प नहीं भी नहीं बचा, क्या बचा? रस्सी बची, सामने क्या रह गया? रस। इसी प्रकार से जहां पर आश्रय उसको क्या कहते हैं? परम प्रेम। तो ये उपासना चलेगी तब तो क्रम से चलेगी, लेकिन उस उपासना की स्थिति ये है माने वास्तव में भक्ति क्या है? वास्तव में और भक्ति ही नहीं, ध्यान रखना, ज्ञान भी जब तक विकल्पों से युक्त है तब तक वो ज्ञान ज्ञान हो सकता है, लेकिन वह ज्ञान मोक्ष कराने में अभी है क्या नाम, अभी कुछ दूरी है। कहा क्यों? नहीं तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता ज्ञानम ते अहम है। कैसे? तो शब्द जोड़ा विज्ञान, क्योंकि जब तक अपने साध्य का हमें विशेष ज्ञान नहीं होता है तब तक जो है वो मोक्ष देने वाला, तब तक वो स्वराज्य देने वाला नहीं होता। इसलिए यहां पर भी अब हमने जिस ओंकार को यहां पर लक्षित किया गया कि ओंकार ही हमारा लक्ष्य है और ओंकार की हमें उपासना करनी है, और ओंकार की उपासना करनी है तो ओंकार का रूप क्या है और विशेष रूप से उसे समझना है, इसलिए उसे विशेष रूप से समझाने के लिए ही यहां पर प्रारंभ किया कि ओम क्या है, तो संकेत कर दिया कि ओम जो है एक अक्षर है और वही ब्रह्म है, ऐसा संकेत किया। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, गीता में भी भगवान ने कह दिया, थोड़ा सा अंतर कर दिया कि ओम क्या है तो ब्रह्म का कोश है। ब्रह्म का क्या है? कोश है। और किंतु कोश होते हुए कोश कहां रहता? तो उस आश्रय से उसकी अत्यंत समीपता होती। इसलिए यह ओम जो है उसका अत्यंत समीपी, इसलिए समीपी होने के कारण उसे भी क्या कह देते हैं, का ब्रह्म ही कह देते हैं। जैसे मंत्रियों के पीए हैं, उनके बॉडीगार्ड, उनको भी क्या एक तरह से कह देते हो, का मंत्री ही है। यहां तक चपरासी को भी कह देते हैं, प्रधानमंत्री के पास मिलने जाओ और चपरासी की इजाजत न हो, वो न चाहे तो मिलना हो जाएगा। आपके कार्ड को भी तुमने दे दिया, पहुंचा दो, वो उसके ऊपर है, नहीं पहुंचा है ना, तो उसका भी सहयोग चाहिए, ठीक है ना। समीपी का भी जो है, समीपी ही उससे आपको मिलाने में समर्थ होता है। तो इस प्रकार से यहां संकेत करते, इसलिए इस ओम की स्थिति क्या है, इसके विशेष रूप को जानना है, तब जो कहा ओम यह एक अक्षरात्मक है। रूढ़ी ओम एक अक्षर रूप होते हुए भी उसे ग्रहण करते हैं, तब तो यौगिक रूप से ग्रहण करने पर उसमें क्या होता है, तो कहने लगे इसलिए मात्राओं की चर्चा संहिता में पहले कर दी, उस क्षणों का आकलन करना है। और मात्रा माने मियते इति मात्रा, जहां पर हम एक माप करते हैं, माप करना माने माप लिया, जान लिया, मापना माने जान, अर्थात कितना उसका आकार है, कितना वजन है, ये सब जो है माने जान लेने का नाम क्या है, मापना। जैसा वो है, जहां तक है, उसको जान लेना, यही हो गया मापना। तो अब मात्रा क्या कराती है, उस ओम का माप कराती है, उस ओम का ज्ञान कराती है, उस ओम का बोध कराती है। मात्रा किस लिए, तो मात्रा का तात्पर्य है उसका बोध कराना। शब्द स्वरूप को जानने के लिए आपको क्या देखना पड़ता, उसमें मात्राएं देखनी पड़ती, मात्राओं को देख करके आप शब्द स्वरूप को समझ लेते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहां पर भी ओम यो जो है, इसको जब समझना है तो समझने के लिए क्या करना पड़ता, माप करना पड़ता, मात्राओं को देखना पड़ता, और मात्रा में जब जाते हैं तब संकेत किया इसकी मात्रा क्या है, तब कहने लगे इसकी तीन मात्राएं। पहले संकेत क्या किया, तीन मात्रा, अकार, उकार और मकार, ठीक है। अब जो है अकार मात्रा, उकार मात्रा, तीन मात्राएं, इतना तो समझ लिया, तीन मात्राएं हैं। मात्राएं हैं माने ओम को बतलाने वाली, ओम का बोध कराने वाली, ओम क्या है, कैसा है, कितना वजन है, कितना इसमें सामर्थ्य है, इस चीज को बतलाने के लिए कौन है, अकार, उकार और मकार।